بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے داعش کا فتنہ اور امریکہ کی قیادت میں نام نہاد بین الاقوامی اتحاد۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، بدھ کو برسلز میں امریکہ کی قیادت میں نام نہاد داعش مخالف اتحاد میں شامل ملکوں کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا، اور مبینہ طور پر اجلاس میں عراق اور شام میں اتحاد کی کاروائیوں اور حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا اور بلند و بانگ دعوے بھی کیے گئے۔ اس تناظر میں آج کے پروگرام میں ہم نے داعش مخالف اتحاد اور اس کے فضائی حملوں کی حقیقت کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
برسلز میں گزشتہ بدھ کو داعش کے خلاف تشکیل پانے والے اتحاد میں شامل 60 ملکوں کے دو روزہ اجلاس کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ شام اور عراق میں داعش کی پیش قدمی کو روک دیا گیا ہے، تاہم دہشت گرد تنظیم کو شکست دینے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ بدھ کو امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے بھی کہا کہ امریکی قیادت والے اتحاد نے داعش کو کاری ضربیں لگائی ہیں اور اب تک داعش کے خلاف تقریباً 1000 فضائی حملے ہو چکے ہیں۔ کیری کا دعویٰ تھا کہ امریکی قیادت والے اتحاد کے حملوں کی وجہ سے اب داعش اپنا کوئی بھی کارواں کہیں بھیجنے سے خائف ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور ان کے اتحادی خواہ کوئی بھی دعویٰ کریں، لیکن سچائی یہ ہے کہ فضائی حملوں سے داعش پر بہت زیادہ اثر نہیں پڑا ہے۔ چنانچہ شام کے صدر بشار اسد نے بھی کہا ہے کہ داعش کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کے فضائی حملے نمائشی اور بے نتیجہ ہیں۔ داعش کے خلاف مؤثر کارروائی شام کی فوجیں کر رہی ہیں جو زمین پر دہشت گردوں سے لڑ رہی ہیں۔ بشار اسد نے کہا کہ فضائی حملوں سے دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی اتحاد کے فضائی حملوں سے شام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ داعش کے خلاف جو حملے امریکی قیادت والے اتحاد کی جانب سے ہو رہے ہیں، ان میں ایسے ممالک بھی شامل ہیں جو عملی طور پر داعش کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ خود امریکہ کا کردار اس سلسلے میں انتہائی مشکوک ہے، کیونکہ خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ داعش کے خلاف لڑائی کے دوران کم و بیش 5 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ امریکی ٹرانسپورٹ طیاروں سے اس علاقے میں فوجی اسلحہ جات کی کھیپیں گرائی گئی ہیں جو داعش کے کنٹرول میں ہیں۔ حالانکہ امریکہ اسے غلطی کا نام دیتا ہے، لیکن اس خطرناک غلطی کو 5 بار دہرایا جانا شکوک و شبہات کا باعث ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ دہشت گرد تنظیموں پر بہت کم وقت میں قابو پایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ان دہشت گردوں کو ملنے والی مالی اور اسلحہ جاتی مدد بند کر دی جائے۔ بشار اسد کے مطابق ترکی اب بھی دہشت گردوں کو بھرپور مدد دے رہا ہے۔ اسی طرح قطر، سعودی عرب اور دیگر ممالک بعض دہشت گردوں کو اعتدال پسند قرار دے کر یا اپنا اتحادی مان کر ان کی مدد کر رہے ہیں۔ بشار اسد کے مطابق یہی چیز بحران کے جاری رہنے کا اہم سبب ہے، ورنہ بہت کم وقت میں صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اکتوبر میں امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے بھی سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور ترکی کے بارے میں واضح الفاظ میں یہ بیان دیا تھا کہ ان ملکوں نے بشار اسد کی حکومت کو کسی بھی قیمت پر گرانے کی پالیسی اختیار کی، اور اسی پالیسی کے تحت بہت بڑی مقدار میں ہتھیار اور پیسہ عسکریت پسندوں کو دیا، جن میں داعش اور النصرہ فرنٹ کے عسکریت پسند بھی شامل تھے۔ ان حقائق کے پیش نظر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دہشت گردوں کی طاقت اور ان کا پھیلاؤ بڑھنے کی اہم وجہ دہشت گردی کے سلسلے میں اختیار کی جانے والی امتیازی اور تفریق آمیز پالیسیاں ہیں، اور جب تک یہ پالیسیاں جاری رہیں گی دہشت گردی کے خلاف جد و جہد کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گی۔
ناظرین، امریکہ نے عراق اور شام میں داعش کے خلاف نام نہاد جنگ کا اعلان کیا اور اس کے لیے ایک بین الاقوامی اتحاد بنانے کا دعویٰ کیا، لیکن اس اتحاد میں انہی حکومتوں کو شامل کیا گیا جنہوں نے داعش اور دیگر تکفیری دہشت گرد گروہوں کی تشکیل اور تقویت میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ نام نہاد داعش مخالف بین الاقوامی اتحاد کے وزرائے خارجہ کے پہلے اجلاس میں امریکی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس اتحاد کے فضائی حملوں سے داعش کی کمر ٹوٹ گئی ہے، جبکہ عراق اور شام کے اندر سے موصولہ رپورٹوں سے ان کے اس دعوے کی تصدیق نہیں ہوتی ہے۔ داعش کی کمر ٹوٹ گئی ہے، یہ سچ ہے، لیکن داعش کی کمر امریکی قیادت میں بین الاقوامی اتحاد کے فضائی حملوں سے نہیں، بلکہ عراقی عوام، حکومت اور افواج کے اتحاد اور عراق کی فوج، قبائلی لشکر اور عوامی رضاکار فورس کے مشترکہ آپریشن اور ان کی مجاہدت نے داعش کی کمر توڑی ہے۔ अमरीकी इत्तेहाद ने तो इराक में भी और शाम में भी दाइश की मदद ही की है जब दाइश के अफराद इराकी अफवाज के मुहासरे में थे और उनके पास अपने बचाव के लिए असलहे नहीं बचे थे, तो अमरीका बहादुर के तैयारों ने असलहे की कम से कम 9 खेपें दाइश के दरमियान गिराई। अगरचे अमरीकियों का दावा है कि ये खेपें गलती से दाइश के दरमियान गिर गई, तो सवाल यह है कि गलती से कोई खेप इराकी अफवाज और अवामी रजाकार फोर्स के दरमियान क्यों ना गिर गई। और फिर अमरीकी वजीर खारजा ने जब यह दावा किया है कि अमरीकी इत्तेहाद के फजाई हमलों से दाइश की कमर टूट गई है, तो उन्हें दो एक हमलों का हवाला भी देना चाहिए था कि किस हमले में दाइश के कितने लोग मारे गए। इसके अलावा बारहा इराक और शाम दोनों मुल्कों में अमरीकी इत्तेहाद के फजाई हमलों में आम शहरी या इराक और शाम के फौजी मारे गए हैं। 20 अक्टूबर को अमेरिका के फिजाई हमलों में दाइश के खिलाफ जंग में मसरूफ अवामी रजाकार फोर्स के दर्जनों जवान शहीद हो गए थे। ब्रसेल्स इजलास के हवाले से यह बात भी काबिल गौर है कि अमरीकी वजीर खारजा ने इजलास में एक बार फिर ईरान से दाइश के खिलाफ तआवुन की दरख्वास्त की है। इसके जवाब में ईरानी हुक्काम ने साफ और वाज़े लफ्जों में ऐलान किया है कि इराकी हुकूमत के साथ दाइश के खिलाफ ईरान का तआवुन जारी है और जारी रहेगा। जहां तक अमरीकी इत्तेहाद के साथ तआवुन की बात है, तो ईरान ने एक बार फिर इस बात को वाज़े कर दिया है कि ईरान अमरीका की क्यादत में किसी भी इत्तेहाद में शामिल नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान के नजर में नाम नहाद दाइश मुखालिफ इत्तेहाद के अहदाफ मशकूक हैं, क्योंकि यह उन्हीं मुल्कों का इत्तेहाद है जिन्होंने दाइश को तश्कील दिया, इसकी तकवियत की, इसको असलहे फराहम किए और इस हद तक उसको पहुंचाया कि यह ग्रोह आज आलमी खतरा बन चुका है। आज के प्रोग्राम में शिरकत के लिए हमने अपने लंदन स्टूडियो में आने की दावत दी है बर्रे सगीर के मुमताज दानश्वर और सीनियर तजिया निगार डॉक्टर इनायतुल्लाह अंदराबी को। कराची से आज के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार खुर्रम जकी और टेलीफोन लाइन के जरिए आज के प्रोग्राम में शरीक किया जाएगा बेल्जियम में मुकीम पाकिस्तान के साबिक सियासतदान और तजिया निगार मोहम्मद फैसल खान को। हमारे साथियों ने बताया है कि फैसल खान साहब से टेलीफोन लाइन के जरिए राबिता बरकरार हो गया है, तो गुफ्तगू का आगाज उन्हीं से करते हैं। फैसल खान साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
खान साहब, दाइश मुखालिफ बैन अलाक्वामी इत्तेहाद के वज़राए खारजा के इजलास में क्या तय पाया है? इसमें कोई ठोस फैसला भी किया गया है या नशिस्तंदो गुफ्तंदो बरखास्तन?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो रोज कबल यहाँ ब्रसल्स में दाइश के हवाले से एक इजलास हुआ है जिसमें के अमरीकी इत्तेहादी थे शामिल और मेरे ख्याल से लगभग उनकी तादाद कोई 60 मुल्कों के करीब उनके इत्तेहादी हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि उसमें जो भी उन्होंने बातें की हैं, जो भी उन्होंने डिस्कशन किया है, उसमें कोई भी ठोस इकदाम नहीं लिए गए हैं। मिसाल के तौर पर जॉन कैरी साहब ने ये कहा कि दाइश के खात्मे के लिए कई साल लग सकते हैं, तो इससे जाहिर ये होता है कि वो इस मामले में संजीदा ही नहीं, क्योंकि ये भी आपको पता है कि इस वक्त जो यूरोप में जो मगरब के कई ममालिक हैं, उन्होंने खुद दाइश को या ISIS को की तकमील के मराहल के लिए और उसको ताकत पहुंचाने के लिए उन्होंने बे इंतहा तौर पर माली वसाइल भी फराहम किए हैं, और उनका असल मकसद ये था कि दाइश को मतलब इस तरह मुनज़्ज़म किया जाए कि इसको मुसलमान मुल्कों और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। और आज भी उसका जो मकसद है वो यही है कि जब वो ये कहते हैं कि इस जंग में ज्यादा टाइम लगेगा, इसका मकसद ये है कि वो इस दोहरी जंग में मुसलमान मुल्कों के वसाइल को मुसलमान मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल करके इन्हें कमजोर करना चाहते हैं। तो जो दो रोज कबल ब्रसल के अंदर जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर तो कुछ भी नहीं है, और वो मैं समझता हूँ कि एक दोहरा मेयार है इनका और इन्होंने धोखा देने की कोशिश की है। दरहकीकत तो अमरीका जो है खुद जो है दाइश की और या ISIS की सरपरस्ती कर रहा है, और जब तक देखिए मैंने इनको पहले भी कहा था और फिर मैंने इनको बावर कराया है कि अगर आप दाइश की ISIS का खात्मा करना चाहते हैं तो पसंद और नापसंद की बुनियाद पर यह नहीं होगा, इसमें आपको संजीदा होना होगा और हकीकतन आपको इकदाम करने होंगे जो कि अभी तक अमरीका नहीं कर रहा।
बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, लाइन पे रहिएगा। और नाजरीन चलते हैं लंदन स्टूडियो जहाँ बर्रे सगीर के मुमताज दानश्वर और सीनियर तजिया निगार डॉक्टर इनायतुल्लाह अंदराबी साहब मौजूद हैं। अंदराबी साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
अंदराबी साहब, ब्रसेल्स इजलास के बारे में आपका तजिया क्या है? इस इजलास का असल हदफ क्या था?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये इजलास बजाहिर दाइश के खिलाफ एक कोएलिशन का इजलास था, लेकिन ऐसा सिर्फ बजाहिर था, लेकिन इसमें वो मामला जो है वो मकसद नहीं था। देखिए, इस बात को जरा हमें रैशनली और एक अकल के साथ अप्रोच करना चाहिए कि अमेरिका का दाइश के बारे में ये इतना हंगामा खड़ा करना, ये क्या, हम इससे क्या समझें? इसको इसको जरा इस पर जरा आप गौर करें। यानी हम इसको, यानी व्हाट सेंस शुड वी मेक ऑफ इट? हम इससे क्या समझें कि इतना शोर शराबा, इतना हंगामा क्यों है? यानी ये तो एक कॉमन चीज है, हर कोई जानता है कि दाइश जो है, ये फोर्सेस जो है, ये इन्हीं की पैदावार है। इन्होंने इनका अभी 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 एक कॉलम निगार ने लिखा था एक अमेरिका में, उसने एक अच्छी इसमें मिसाल दी थी। उसने कहा था कि अफगानिस्तान में इन्होंने शुरू किया एक नर्सरी के तौर पर, एक प्राइमरी स्कूल के तौर पर, जब सोवियत यूनियन के खिलाफ वहां जंग लड़ी जा रही थी। उन दिनों वहां CIA बहुत इन्वॉल्व हुआ और एक उन्होंने एक नर्सरी शुरू की ऐसे लोगों की जो इंतहा पसंद और बहुत ही दहशतगर्द टाइप के हूं। तो वहां से एक नर्सरी शुरू हुई और फिर इसका स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है वो शाम में शुरू हो गया, शाम में 2011 से, और वही एक बतदरीज इसमें एक ग्रोथ हो रही है। और ये खुद कह रहे हैं कि अलकायदा जितना था उससे ज्यादा दाइश जो है, उससे ज्यादा जो है वो एक्सट्रीमिस्ट है। तो यानी ये खुद इसका, ये खुद ये कह रहे हैं कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो वायलेंट और इंतहा पसंद है, और ये सब जानते हैं। तो इस पर इनका इतना हंगामा खड़ा करना, ये जरा इसको हमें देखना चाहिए कि ये है क्या मामला, क्या ये वही है जो ये कह रहे हैं या कुछ और मामला है। तो मेरी गुजारिश है कि ये मामला जो है दाइश का नहीं है, इसमें मकासद कुछ और है। दाइश का देखिए ना, मैं गुजारिश कर रहा था कि इसको जरा अकल से हम देखें। आप देखिए ना, दाइश क्यों, अमेरिका को क्या थ्रेट है उससे? यानी अमेरिका या यूरोप को उससे क्या थ्रेट है? मसला ये है ना, कि मसला ये है कि ये जो कॉलोनियल सिविलाइजेशन है, ये जो इस्तेमारी तमद्दुन है, ये जो दुनिया में इन्होंने एक अपना एक तमद्दुन एक कायम किया है, एक पैराडाइम कायम किया है जिंदगी गुजारने का, और सियासी और इज्तिमाही जिंदगी उस्तवार करने का जो एक नक्शा इन्होंने खड़ा किया है, ये यानी ये जो तमद्दुन है, इस तमद्दुन को देखिए, एक एक ये उसूली बात है कि तमद्दुन को दहशतगर्दी से खतरा नहीं होता। दहशतगर्दी एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और उससे निपटा जा सकता है। तमद्दुन को तमद्दुन से खतरा होता है। असल में ये जो एक मादी तमद्दुन उभरी है, जहां सरमाए से बात शुरू होती है, सरमाए पर ही खत्म होती है, एक सरमायादार ही नहीं, सरमाया परस्त तमद्दुन जो ये उभरा है, इसको पहली बार जो एक चैलेंज सामने आया है वो ईरान की इस्लामी तहरीक और एक तौहीदी तमद्दुन की, जहां एक बिल्कुल एक बहुत ही मुतवाजिन जिंदगी का तस्वर हो, इंसान के मादी और रूहानी जरूरियात का ख्याल रखा गया हो, वो तमद्दुन जो अब जो सामने आ रही है और पनप रही है, इस तमद्दुन को उससे ये अपने आप को खतरे में महसूस कर रहा है। तो वो असल में वो खतरा है, और ये सारी सरगर्मी जो है उसी ईरान के इस्लामी इंकलाब और उस बढ़ती हुई तहरीक के खिलाफ ये वही महज आ रही है और लोगों को जमा कर रहा है, मोबिलाइज कर रहा है, अपनी फौजों का दायरा बढ़ाना है। तो ये सारी जो है इसमें वही चीज मुहर्रिक है।
शुक्रिया अंद्राबी साहब। और नाजरीन, कराची से भी राबिता बरकरार हो गया है, जहां पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार खुर्रम जकी साहब मौजूद हैं। खुर्रम जकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, दाइश मुखालिफ बैन अल-अक़वामी इत्तेहाद के बारे में आपका तजिया क्या है? इस इत्तेहाद का असल मकसद क्या है? दाइश को खत्म करना है या दाइश को खत्म करने के बहाने मुसलमान मुल्कों की कमर तोड़ना है?
देखें जी, बात वाज़ह है कि आप ये देखें कि इस इत्तेहाद में अगर आपका इशारा ब्रसल्स में होने वाली कॉन्फ्रेंस की तरफ है, तो ये देखने की ज़रूरत है कि वो कौन से ममालिक हैं जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं और उनके इत्तेहादी कौन कौन हैं। दाइश का फितना क्रिएट करने वाले शाम में, इराक में, और ओवरऑल अगर आप बात करें जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर तकफीरी खवारिज का फितना क्रिएट करने वाले ममालिक कौन हैं। सऊदी अरब सर फहरिस्त है, उसके साथ साथ फिर कतर है, फिर कुवैत है और दीगर अरब ममालिक हैं जो कि पूरी दुनिया में इस आइडियोलॉजी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो और ये जो इत्तेहाद जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इनके इत्तेहादी यही लोग हैं। तो बहुत कम उम्मीद है इस बात की कि इनका असल मकसद वहां पर जाकर दाइश के फितने को ख़त्म करना है, बल्कि बज़ाहिर ये नज़र आता है कि ये वहां पर इस चीज को प्रोलोंग करेंगे, उनको किसी हद तक महदूद भी करेंगे कि कहीं उनके जो इत्तेहादी ममालिक हैं खत्ते में उनको कोई खतरात लाहक ना हो। लेकिन ये समझना कि ये वहां पर इस वजह से आए हैं इराक में या शाम में जो कार्रवाइयां कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हो कि ये इस फितने को खत्म करना चाहते हैं, ये महज अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात होगी। इनका ऐसा कोई इरादा नहीं है और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ माह से जो एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं इस फितने को ख़त्म करने के बहाने, कभी उनका हदफ खुद इराकी अवाम बन जाते हैं, कभी ये वहाँ पर इराकियों को असले की फराहमी के बहाने खुद दाइश को असला फराहम करते हैं जो इन्होंने ड्रॉप की वहाँ पे इमदाद, वो दाइश के हाथ लगी और ऐसा कई दफ़ा हो चुका है। तो और फिर अगर आप ये देखें पिछले कुछ माह में जो मुसलसल रिपोर्ट्स आ रही हैं खुद बरतानिया की तरफ से कि वहां से कितने ही सैकड़ों लोग जो हैं वो तुर्की के रास्ते शाम में और फिर इराक में दाखिल हो रहे हैं दाइश की मदद के लिए, तो जो अपने मुल्कों में कंट्रोल नहीं कर पा रहे इन एलिमेंट्स को, वो क्यों कर चाहेंगे कि वो इराक में या शाम में इस फितने को काउंटर करें, जबकि उनका असल मकसद इस फितने के जरिए खुद इन इन मुल्कों को डिस्टेबलाइज करना था। और अगर आपको याद हो 2005 से जो एक बार बार मगरबी ममालिक और उनके हमनवा जो अरब ममालिक हैं, अरब बादशाहतें हैं, वो एक क्रिसेंट का जिक्र करती थी, तो आप देखेंगे इस पूरे फिनोमेना में ये जो दाइश का है इसमें इन्होंने टारगेट उन्हीं कंट्रीज को किया गया है जो कि इनका जो इनके जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट थे उस खत्ते में उसके आगे रुकावट बन रही थी या बन सकती थी। और इन्होंने गोया वो जो ईरान का एक इत्तेहाद कायम हुआ था रीजन में उसको कमजोर करने की कोशिश की है। तो कोई वजह नहीं है कि पहले वो खुद एक वहां पे एक बैरियर क्रिएट करें रेजिस्टेंस के आगे और फिर उसी को खुद ही खत्म कर दें। हाँ, वो उसको इतना महदूद रखना चाहेंगे कि खुद उनके इत्तेहादियों के लिए वो खतरा ना बने। इससे आगे मैं नहीं समझता कि वो फौरी तौर पर दाइश के फितने को खत्म करने के किसी मूड में।
बहुत बहुत शुक्रिया फैजल खान साहब से राबता हमारा मुनक़ता हो गया, हमारे साथी दोबारा उनसे राबता बरकरार करने की कोशिश कर रहे हैं। अंदराबी साहब, जनाब ब्रसेल्स इजलास में अमरीकी वजीर खारजा ने जो दावा किया है वो आपके पेशे नज़र है। उनका कहना यह है कि अमरीका की क़यादत में बैन अलाक़वामी इत्तेहाद के फ़िज़ाई हमलों ने दाइश की कमर तोड़ दी है। उनके इस दावे के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वाकई अमरीका के फ़िज़ाई हमलों ने दाइश की कमर तोड़ी है?
उनने बल्कि इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात कही। उनने ये भी कहा कि ईरान भी हमारे साथ था और ईरान ने भी जो है वो बमबारी की, ईरान के तैयारों ने बमबारी की और उसकी तरदीद खुद ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने की। तो उन्होंने जॉन कैरी ने बहुत ही दिलचस्प बातें कही हैं, लेकिन ये देखिए उसी पर मेरे दूसरे नुकते की जो है वो बुनियाद है, वो जो जॉन कैरी बता रहे थे। असल में देखिए ना, हम इस वक्त जिस दुनिया में रह रहे हैं, एक मीडिया की दुनिया में, मीडिया की एज में, तो यहाँ पे एक स्टीरियोटाइप्स बनाए जाते हैं, ऐसी इमेजेस बनाई जाती हैं जिसकी बिना पर लोग दुनिया का फहम हासिल करते हैं। यानी लोग दुनिया को उसी तरह समझते हैं जिस तरह इसको मीडिया प्रेजेंट करता है। अब अमेरिका ये चाहता है कि वो एक तरफ जो है अपने आप को लाए और दूसरी तरफ जो ये दाइश है, दाइश को वो सुन्नी दुनिया से वाबस्ता करता है और दाइश को वो, हालांकि अब देखिए ना, इस वक्त इराक में जो कामयाबियां हो रही हैं, हाल ही में वहां सलाहुद्दीन में जो बगदाद के यानी उस इलाके में वाकई है, तो वहां आप देखिए सलाउद्दीन में बहुत बड़ी कामयाबी हुई, वहां पर दाइश का बिल्कुल उनकी बेसिस खत्म हुई और उसमें सिर्फ इराकी अफवाज और अवामी रजाकारों ने और वहां के सुन्नी अमायदीन जो है उन्होंने उसमें हेल्प की। वही लोग हेल्प कर रहे हैं ग्राउंड पर, उसी से अगर कुछ होता है तो उसी से। लेकिन यहां अमरीका ये बावर कराना चाहता है कि वो एक सफ आराई का एक सिनेरियो बनाना चाहता है कि एक सफ में जो है ईरान और अमेरिका एक तरफ है, सुन्नी दुनिया दूसरी तरफ है, तो इस तरह से वो मुस्लिम दुनिया में इंतशार फैलाना चाहता है और इस इंतशार में वो उसका उसकी जो उसमें जो बेसिक इनपुट है वो आल सऊद और सऊदी जो उनकी रिलीजियस जो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसमें वो किरदार अदा करते हैं। तो इसमें एक खास मकसद जो है वो बेसिकली एक वो सिनेरियो खड़ा करना है, एक स्टीरियोटाइप एक खड़ा करना है कि एक तरफ अमेरिका है और अब अमेरिका ईरान के साथ भी मिल रहा है और ये दोनों इकट्ठे दाइश के खिलाफ है और ये हकीकत के बिल्कुल मुनाफी है, इसमें इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने इब्तिदा में आपको बताया कि ईरान ने और रहबर मुअज्जम ने पहले ही ये बताया कि हमें इनकी नीयतों पर इनके इरादों पर बिल्कुल कोई एतमाद नहीं है, ये क्या कह रहे हैं और इनको क्या करना है, तो लिहाजा किसी मफाहमत का और किसी ज्वाइंट एक्शन का कोई इम्कान ही नहीं है। लेकिन इस वक्त अमरीका यही बावर करा रहा है कि और इस ये बावर कराने से वो मुस्लिम दुनिया में एक इंतशार फैलाना चाहता है और ये बहुत ही एक घनावना मनसूबा है। और मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि इसकी इब्तिदा तो काफी पहले हुई, ये तकफीरी और इस तरह के एलिमेंट्स जो है वो 80s में अफगानिस्तान में ये पैदा होने शुरू हुए और तब से इनकी बराबर परवरिश की जा रही है और इसमें ये सारे लोग शामिल हैं जो अभी ब्रसल्स में शामिल थे, सऊदी अरब और कतर और ये सारे लोग।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, फैसल खान साहब से राबिता बरकरार हो गया है। जी खान साहब आप लाइन पर हैं जनाब? जनाब इराक और शाम में नामनेहाद दाइश मुखालिफ इत्तेहाद की कारकर्दगी के बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए जी, मैंने जैसे पहले कहा कि बुनियादी तौर पर जो कल यहाँ दो रोज कबल जो ब्रसल्स में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम इराक के अंदर जो इत्तेहादी लोग कार्रवाई कर रहे हैं दाइश के खिलाफ उससे वो मुतमईन है, लेकिन दुनिया देख रही है और ये हम लोग भी देख रहे हैं, जो इंटरनेशनल मॉनिटर्स हैं और जो डिप्लोमेट्स हैं वो जो देख रहे हैं, अगर सही माने में जो नजर आ रहा है वो ये कि ये बिल्कुल नाकाम है। देखिए उसकी वजह ये है कि ये दाइश को जब तक अगर ये कामयाब होना चाहते हैं तो इनके लिए ये हवाई हमलों से मामला नहीं चलेगा, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर इसको दाइश को खत्म नहीं करना चाहते, ये दाइश को इस तरह जिंदा रखना चाहते हैं कि ये इसको अपने मामला और अपने पॉलिटिकल जो उनके इंटरेस्ट है उसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब जैसे कि अभी कहा गया है कि अमेरिका ये तासुर दे रहा है कि ईरान उनके साथ है, मैं समझता हूँ ईरान की पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ईरान ये समझता है और ये है भी हकीकत के हवाई हमलों से आपके मामला कंट्रोल नहीं होंगे। अगर आपने वहां पे कामयाबी हासिल करनी है तो सबसे पहले आपने दाइश के माली वसाइल को बंद करना होगा, माली वसाइल को बंद करना पड़ेगा और उसके अलावा जो अमेरिका और मगरबी हलीफ ममालिक पसे फर्दा उसको जो हथियार फराहम कर रहे हैं उन हथियारों की पाबंदी रोकनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि मेरी इत्तला के मुताबिक वहां पर जमीनी कार्रवाई जो है जमीनी कार्रवाई हो और वो भी इराक की फौज के साथ मिलकर किया जाए। अगर ये इंडिपेंडेंट करेंगे तो इसका मतलब ये कि इसमें कामयाब नहीं होंगे और एक वजह ये भी है कि अब ये जो तमाम सूरत आप जो देख रहे हैं दाइश जो फैल गई है अब एशिया तक आ गई है, इससे एक बात देखिए वाजे होती जा रही है कि इलाके के अंदर जो अमेरिका का जो मगरब का जो एजेंडा था वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि इराक के अंदर इनको बहुत बुरी तरीके से अजीमत उठानी पड़ रही है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम जकी साहब। जनाब दाइश के ताल्लुक से अमरीकी जो अहदेदार हैं उन्होंने एक से जायद बार ये कहा है कि इराक और शाम के ताल्लुक से उनकी हिकमत अमली और पॉलिसी अलग है, कि इराक में तो वो दाइश को ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन शाम में दाइश के खिलाफ उनके जो ऑपरेशन है उसका तरीका ज़रा मुख्तलिफ है, यानी शाम में वो शाम की जो हुकूमत है उसके मुखालिफ जो दहशतगर्द ग्रोह हैं जिनमें दाइश भी शामिल है उसकी तकवियत भी कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर अमेरिका दहशतगर्दी को खत्म करना चाहता है, दहशतगर्दों को खत्म करना चाहता है, तो वही दाइश इराक में है, वही दाइश शाम में है, तो इसके बारे में इराक और शाम में पॉलिसियां अलग अलग क्यों हैं?
जी देखें जी, ये जो आपकी प्रिमाइज है, आपकी मतलब जो आर्गुमेंट है कि वो खत्म करना चाहता है, ये खुद ये जो प्रोपोजिशन है ये सही नहीं है। वो कतन खत्म नहीं करना चाहते। अगर खत्म करना चाहते हो तो जैसा कि मुझसे पहले फैसल साहब ने भी कहा और उससे पहले भी मेहमान एक्सपर्ट फरमा रहे थे कि वो अगर खत्म करना मकसूद होता तो इनको क्रिएट क्यों करते। और इन ग्रुप्स की, जैसा कि पीछे एक्सपर्ट ने कहा कि अफगानिस्तान में 80 की दहाई से इनकी सरपरस्ती की जा रही है, और जो साबिक अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन है वो खुद रिकॉर्ड पर है, उन्होंने कहा कि हमने इन ग्रुप्स को जो वहाबी ब्रांड रखने वाली आइडियोलॉजी थी हमने उसको खुद स्पॉन्सर किया है अफगानिस्तान में रशिया के मुखालिफ, जो उस वक्त के यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था, तो वो तो उन्होंने नर्सरीज बनाकर दी है इनको इस आइडियोलॉजी को, वो थ्रू सऊदी अरबिया और दीगर जो इनके पपेट स्टेट थी मिडिल ईस्ट में, उनके थ्रू सपोर्ट करते रहे। तो उनका कतई मकसद नहीं है। और इस वक्त जो खुद सीरिया के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं कि वहां पर वो एक्चुअली सीरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो उन्हीं अपोजिशन ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं जो वही आइडियोलॉजी रखती है जो कि दाइश रखती है, यानी वही तकफीरी खवारिज जो दूसरों को कत्ल करते हैं, काफिर करार देते हैं, उनके गले काटते हैं, और मुसलसल इस तरह की वीडियोज, चाहे वो जुबे नुसरा हो, चाहे फ्री सीरियन आर्मी हो, चाहे दाइश हो, इन सबका एजेंडा, इन सबकी सोच, इन सबका जो मेथोडोलॉजी और जो इनकी आइडियोलॉजी है जो पीछे काम कर रही है वो बिल्कुल सिमिलर है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो एक ग्रुप को अपना दुश्मन करार दे देना और बोलना कि इसको खत्म करने के लिए हम सीरियन गवर्नमेंट के बजाय जो दूसरे टेररिस्ट ग्रुप है उनको सपोर्ट करेंगे, खुद ये बता रहा है कि उनका कतई मकसद ये नहीं है कि वहां पर ये आइडियोलॉजी किलो, एक ग्रुप को खत्म कर देंगे, दूसरे ग्रुप को ले आएंगे, दूसरे ग्रुप को खत्म कर देंगे, तीसरे को ले आएंगे। अब यही देखें, ये फ्री सीरियन आर्मी है जुबे नुसरा, इनको इनके तहादी सपोर्ट कर रहे हैं बीबी वहां, तो एक ग्रुप को खत्म करते हैं, दूसरे को ले आते हैं, लेकिन मकसद इनका इस आइडियोलॉजी को किल करना नहीं है। ये एक ग्रुप को दबा के दूसरे ग्रुप को ताकतवर कर देंगे, लेकिन आइडियोलॉजी वही तकफीरी आइडियोलॉजी होगी, वही कत्लो गारतगिरी होगी। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको ये इन ममालिक में, सीरिया में, इराक में कायम रखेंगे जब तक के इनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो जाते हैं। और वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये है कि इन ममालिक को ईरान के दायरे असर से बाहर निकालकर अमेरिकन कैंप में, या जो इनके रीजनल इत्तेहादी हैं, जो अरब बादशाहत हैं, उनके कैंप में जब तक नहीं लेकर जाने में कामयाब हो जाते, उस वक्त तक इनके ऑपरेशंस का या ये जो फितना है जिसको इन्होंने वहां पर क्रिएट किया है, इसको खत्म करने का कोई क्वेश्चन नहीं पैदा होता। देखें, खुद ईरान की अगर बात करें तो ईरान में भी जुंदुल्ला की सूरत में, जैशुल अदल की सूरत में, ये जो इन्होंने वहां पर दहशतगर्द ग्रुप क्रिएट किए हुए, ये हर जगह यही काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में यही काम कर रहे हैं, यहां पे तहरीके तालिबान की सूरत में और दीगर लश्कर जंगी और सिपाही साहबा की सूरत में यही अरब बादशाह आते हैं और यही अमेरिका है जो कि यहां पे इन ग्रुप्स को भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये पूरी आलम इस्लाम को इस फितने का सामना है जिसको बेसिकली अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज थ्रू देयर प्रॉक्सीज, जिनमें सर फहरिस्त जो है वो सऊदी अरब है, इस फितने को सपोर्ट कर रहा है ताकि ये जितने भी मुसलमान ममालिक हैं ये इनके हल्का असर में रहें, इनके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में रहें, और कोई भी इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो कि इनके मफादात के खिलाफ हो वो बनाने में कामयाब नहीं हो सके।
बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और इसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, दाइश मुखालिफ नाम नहाद इत्तेहाद और उसकी कारकर्दगी के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अंदराबी साहब, जनाब अमरीकी हुकाम ये कहते हैं कि शाम और इराक के हवाले से उनकी पॉलिसियां अलग अलग हैं, ये उनका दावा है, वो एक से ज़ायद बार वो ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अगर दिक्कत से देखा जाए तो कारकर्दगी तो एक ही नज़र आती है। कुबानी के सेक्टर पर हम ये देखते हैं कि जब दाइश कमजोर पड़ने लग गए तो अमेरिका ने जो असलहे गिराए तो अमेरिका ने ऐलान किया कि ये दाइश के मुखालफिन के लिए असलहे गिराए, लेकिन वो सारे असलहे मिले हैं दाइश को। यही सूरत हाल हमें इराक में नजर आती है कि इराक में दाइश का एक बड़ा ग्रोह इराकी अफवाद के मुहासरे में आ गया था और कई दिन के मुहासरे के बाद उस ग्रोह के पास अपने बचाव के लिए असलहा बाकी नहीं बचा था। तो अमेरिका ने असलहे की 9 खेपें गिराई हैं दाइश के दरमियान। शाम के लिए भी अमेरिका का दावा यही है कि ये गलती से दाइश को मिल गए हैं ये असलहे, और इराक के लिए भी देखते हम ये हैं कि वो शाम में भी इराक के लिए असलहे गिराता है और इराक में भी, और तासुर ये देने की कोशिश करता है कि इराक में दाइश को वो खत्म करना चाहता है। क्या वाकई अमेरिका इराक में दाइश को खत्म करना चाहता है?
तो इब्तिदा में कहा कि खत्म करने का ये प्रपोजिशन जो है, ये जैसा कि हमारे मेहमान भी बता रहे थे, वो सिरे से सही नहीं है। उसमें उसमें देखिए ना, जॉन कैरी ने ये बताया कि अभी ब्रसल्स की बात हम कर रहे थे, वहां उन्होंने ये बताया कि इसमें सालहा साल लग जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, देखिए ना, जॉन कैरी से आप पूछें कि सालहा साल क्यों लग जाएंगे भाई? ये क्या, कितनी बड़ी बात है ये क्या लोग हैं, ये क्या खतरा है, ये कौन सी फौजी कुव्वत है, ये कौन सी ऐसी बड़ी ममलकत है कि आपको सालहा साल आपको लग जाएंगे? क्यों? देखिए ना, ये एक लेजिटिमेट सवाल है, क्यों सालहा साल आपको लग जाएंगे? तो मसला ये है कि सालहा साल उन्होंने जो कहा वो सही कहा, ही मीन्स इट, उनको सालहा साल उनका उनके जहन में वही है, लेकिन उनके जहन में असल में एक ऑक्यूपेशन का एजेंडा है। वो देखिए ना, मैं जो इब्तिदा में कह रहा था, ये एक इस्तेमारी तमद्दुन है जो परवान ही चढ़ा है, यानी पिछले दो चार सौ सदियों से, सालों से ये परवान ही चढ़ा है, दुनिया में जाके लोगों को गुलाम बना के वहां के वसाइल का लूट खसूट करके। यहां की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इस मुल्क की, बर्तानिया की, ये तब आबाद हुई हैं, ये तब शुरू हुई हैं, और इन्हें तब सरमाया बनाया है जब इनका कंट्रोल था बरसगीर पर। वहां से बड़े बड़े उस वक्त इनने कारोबार शुरू करके अब सेटल हुए हैं। तो ये तमद्दुन जो है ये परवान ही चढ़ी है लोगों के वसाइल पर हुक्मरानी करके, और इनका एजेंडा अब भी वही है। अब इसके बहाने होते हैं, अब इसकी लेजिटिमेसी देखनी होती है कि अगर ये फौज को बाहर भेज दें, एंगेज करें और दूसरे मुल्कों में जाएं, तो ये उसका क्या जवाब दे दें। तो जवाब के तौर पर ये मुख्तलिफ चीजें लाते हैं। अब देखिए, एक और बात जो इसके साथ मुंसलिक है, वो यानी मैं गुजारिश कर रहा था कि हमें जरा इसमें रैशनली देखना चाहिए, अकल से इसका तजिया करना चाहिए। तो एक और बात जो इससे मुंसलिक है वो ये है कि मगरिब का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही देव कामत एक इंडस्ट्री है जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और उनका सरमाया बहुत ज्यादा चला जाता है यहां के सियासी अमल में, यहां के इलेक्शंस में, खुसूसन अमरीका के इलेक्शंस में। तो वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वो आखिर सर्वाइव भी कैसे करेगा, यानी उनको भी मार्केट की जरूरत है। तो ये नित नए फितने गढ़ते हैं, उससे एक तो उनकी जरूरियात भी, उनकी खरीदारी भी होती है, और दूसरा ये कि इनको दुनिया में पंजे गाड़ने की एक जवाब मिलता है। यानी जिस तरह आप देखिए ना, जिस तरह एक मुल्क होता है, जैसे आप ईरान को लें, पाकिस्तान को लें, तो ये एक लेजिटिमेट एक एजेंडा है कि मुल्क के दिफा के लिए अफवाज तैनात हूं। उसी तरह से इन लोगों का, अमेरिका का ये उनका एजेंडा है कि उन्हें अपने अफवाज को हर जगह तैनात करना होगा। अब देखिए, जब ओबामा आ गया प्रेसिडेंट, तो उसने ये बताया था कि मैं विड्रॉ करूंगा, मैं अपनी फौजें वापस लाऊंगा। अब देखिए, उतना ही नहीं कि उसने नहीं लाई, यानी अफगानिस्तान में तो अब टाइम हो गया था कुछ फौजें वापस लाने का, उसको छोड़े आप, लेकिन उसने मजीद एंगेजमेंट बढ़ा, मजीद ऑक्यूपेशन उसने बढ़ाई। तो ये एक ऑन गोइंग एजेंडा है, और ये तमद्दुन जो है ये इसी तरह अपनी बका और अपनी फ्यूचर को इसी तरह देख रहा है, हेजमनी के जरिए लोगों को कंट्रोल करने के जरिए इसके बगैर जो है इनकी कोई विजन नहीं है। ये एक इस्तेमारी एजेंडा के साथ अपने आप को आगे देखना चाहते हैं और अपने आप को यानी अपने आप को आगे लेना चाहते हैं एक इस्तेमारी एजेंडा पर। तो असल में जो है बात यही है।
बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आप लाइन पर रहें जनाब। फैसल खान साहब से राबत जी। खान साहब
मैं मौजूद हूँ
जी। जनाब ये अमेरिका ने दाइश मुखालिफ बैन अलाक्वामी इत्तेहाद तश्कील दिया इराक और शाम दोनों मुल्कों में, उसने फजाई हमले शुरू किए और बार बार अमरीकी ओहदेदार ये कहते हैं कि दाइश को ख़त्म करने में बरसों लग जाएंगे। दूसरी तरफ उनकी कारकर्दगी हम देखते हैं कि शाम में भी अगर किसी महाज पर दाइश के अफराद कमज़ोर पड़ते हैं तो अमरीकी असलहे उनको मिल जाते हैं, बकौल अमरीका के वो असलहे गिराए जाते हैं दाइश के मुखालिफिन के लिए लेकिन गलती से दाइश के हाथ लग जाते हैं। यही गलती इराक में भी होती है कि इराक में भी दाइश के अफराद अगर कमज़ोर पड़ते हैं कहीं तो गलती से अमरीकी असलहे उनको मिल जाते हैं फिर वो मजबूत हो जाते हैं। इस सूरत में अमरीकी ओहदेदार जो बार बार ये कहते हैं और जिसको दोहराया है अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने ब्रसेल्स इजलास में भी कि दाइश को ख़त्म करने में बरसों लग जाएंगे, तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि अमरीका ये बताना चाहता है कि वो बरसों दाइश को ख़त्म नहीं होने देगा?
जी हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने आपने पहली बार गुफ्तगू में आपसे वजाहत की थी कि इन्होंने वाजे तौर पर ये एक बहुत अहम उनका ये ऐलान था जिसमें उन्होंने कहा है कि दाइश के खात्मे में कई साल लगेंगे, तो इससे जाहिर देखिए इशारा यही होता है कि अमेरिका इसको फौरी तौर पर खत्म करने के अंदर संजीदा नहीं है। देखिए ये एक प्लान हुआ था, मैंने अब जैसे पहले ही बताया कि इसमें इनका प्लान ये था कि मुसलमान मुल्कों को माशी और जुग्राफी सतह पर कमजोर करने और इनके वसाइल पर कब्जा करने के लिए ये तय किया गया था कि दहशतगर्दी के हवाले से इन मुल्कों को आपस में बरसर पैकार किया जाए और ये इस तरह किया जाए कि कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है और कहाँ लड़ रहा है ये ना पता लगे। इसके लिए उन्होंने इसको नॉन सीन वॉरफेयर स्ट्रेटजी का नाम दिया था। तो ये जो दाइश की क्रिएशन अमेरिका ने की है बेसिकली बुनियादी तौर पर इसकी ये नॉन सीन वॉरफेयर ही का हिस्सा है। अब आप ये देखिए जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अब इराक के साथ साथ ये सीरिया के साथ साथ वो वाजे तौर पर ही कहते हैं आज भी एक कि हम जो है सीरिया के अंदर जो है इनकी मदद करेंगे और वहां पर हम इनके साथ हैं, हम उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो अच्छे दाइश के लोग हैं, मतलब वो अच्छे और बुरे तालिबान जो पाकिस्तान में इस्तलाह पेश की गई थी वो आज उन्होंने इस्तलाह पेश की कि अच्छे दाइश के अरकान और बुरे दाइश के अरकान। तो ये सिर्फ जो चीजें हैं इससे ये बात साफ बाजी होती है कि अमेरिका जो है इसको खत्म नहीं करना चाहता बल्कि अपने अहदाफ का हसूल चाहता है। इसमें जो सबसे अहम बात हुई है जो नई डेवलपमेंट हुई है वो आज ये है कि जर्मनी के जो चांसलर है एंजेला मर्केल, उन्होंने कहा एंजेला मर्केल ने कि भाई जो जिस तरीके से अमेरिका या जो इसके इत्तेहादी वहां के वो इत्तेहाद में शामिल हुए लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो इत्तेहाद दाइश को खत्म करना चाहते हैं वो ये नहीं समझते कि इस तरीके से ये दाइश का जो है आईएसएस खत्म हो सकती है। उनका भी आज कहना यही था कि इसके लिए कोई ठोस इकदाम किए जाने चाहिए। तो देखिए अब तो ये बात मगरब को भी पता लग रही है क्योंकि जिस तरीके से ये फैल रहा है एशिया में आ गया है और मगरब के अंदर भी खेल दाइश के ठिकाने पकड़े जा रहे हैं, ऐसा महसूस ही होता है कि अमरीका सिर्फ अपने इत्तेहादियों को भी जो उसके साथ है उनको भी दाइश के दाइश की मौजूदगी दिलाकर उनको खैर रखना चाहता है।
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम जकी साहब। जनाब अमेरिका और उसके इत्तेहादी मगरबी ममालिक एक तरफ तो दाइश की जानिब से ख़तरा महसूस कर रहे हैं, उनका वो वाजे तौर पर और ये ख़तरा जो महसूस कर रहे हैं तो सही महसूस कर रहे हैं कि खुद उनके मुल्कों के वो अफराद जो जाके दाइश में भर्ती हुए हैं वो वापस आकर उनके लिए मुसीबत बन जाएंगे। दूसरी तरफ उन्होंने ऐसी हिकमत अमली अपनाई है कि दाइश को ना इराक में ख़त्म होने दिया जाए ना शाम में ख़त्म होने दिया जाए। मकसद क्या है, ये चाहते क्या हैं? दो मिनट ढाई मिनट का वक्त है हमारे पास।
देखिए जी मकसद जो इनका ऑब्जेक्टिव इमीडिएट ऑब्जेक्टिव जो था वो तो यही था कि इन्होंने जो रेजिस्टेंस मूवमेंट थी मिडिल ईस्ट में जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ इश्तादा थी खड़ी थी और मुकाबला कर रही थी, अगर आप देखें तो उसकी डायरेक्शन को इन्होंने रेजिस्टेंस की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। यानी इससे पहले यानी दाइश के फितने को क्रिएट करने से पहले उन सब का रुख उन सब की स्ट्रगल जो थी वो थी इसराइल के मुखालिफ। अब उन्होंने एक प्रॉक्सी खड़ी कर दी है, खुद मुसलमानों के अंदर से एक ग्रुप को खड़ा कर दिया है, और रेजिस्टेंस मूवमेंट की जो अब एनर्जी है वो बजाय कि इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो, वो इनसे निपटने में यूज हो रही है। तो ये तो एक फौरी ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, इस तरह से उन्होंने जो रेजिस्टेंस मूवमेंट थी उसको अरब कंट्रीज में जो उनकी पॉपुलैरिटी थी उसको डेंट किया, उसको डैमेज किया है इन्होंने जाके। और तीसरा, इन्होंने जो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस क्रिएट हुआ था थ्रू ईरान, इराक एंड सीरिया, लेबनान, उसको डैमेज किया है। तो ये तीन इमीडिएट इनके मकासद थे। लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स ये नहीं चाहते कि इस खत्ते में जो अमेरिकन एंटी अमेरिकन अलायंस है वो मजबूत हो सके, या वो गवर्नमेंट्स अपनी जड़ें मजबूत कर सकें माशरे में, जो कि अमेरिका की जो इस खत्ते में पॉलिसीज हैं उनसे इख्तलाफ रखती हैं। यही वजह है कि इनका, चूंकि ईरान में एक फेलियर हो चुका 70s में इनका, तो अब ये इराक में किसी भी ऐसी गवर्नमेंट को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है जो कि अमरीकी कैंप से ताल्लुक ना रखती हो। और यही वजह है कि ये मुसलसल इराक, सिंस जब से सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट टॉपल की है इन्होंने, उसके बाद से आप देखें इन्होंने वहां पर स्टेबिलिटी नहीं आने दी। यही जो दाइश है, ये क्या है, ये इससे पहले अबू मुसाब अल ज़रकावी की सूरत में वहां अलकायदा की सूरत में मौजूद थी। तो ये कंटिन्यूटी है, कोई नया फिनोमेना नहीं है। और इसी तरह से सीरिया, चूंकि सीरियन गवर्नमेंट इसराइल के खिलाफ बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रही थी, एक हफ्ता वहां पे रेजिस्टेंस मूवमेंट का, हमास की लीडरशिप वहीं मौजूद थी, हिजबुल्ला की भी प्रेजेंस वहां थी, और वो एक कोऑर्डिनेशन का काम करती थी फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों के हवाले से। तो आपने देखा कि इन्होंने उनको भी डैमेज किया, उनको भी कमजोर किया। अब उनकी तवज्जो वो जो इसराइल के खिलाफ हो रही है, वो अपनी जो सिविल वॉर है उसको वो
इसी के साथ हम फैसल खान और डॉक्टर नातुल्ला अंदराबी के भी शुक्रगुजार हैं। यकीनन अमरीका का हदफ दाइश को खत्म करना नहीं हो सकता है, बल्कि दाइश के फितने के बहाने, जैसा कि खुर्रम ज़की ने कहा है, जो इसराइल मुखालिफ मुज़ाहमती तहरीक है उसको कमजोर करना और मुसलमान मुल्कों में अदम इस्तेहकाम को बाकी रखना, यह अमरीका का बुनियादी मकसद है। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफ़िज़।